जीवन देवता की साधना आराधना क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला 19 सार संक्षेप। ईश्वर छोटी मोटी भेंट पूजाओं या गुणगान से प्रसन्न नहीं होता। ऐसी प्रकृति तो क्षुद्र लोगों की होती है। ईश्वर तो न्यायनिष्ठ और विवेकवान है। व्यक्तित्व में आदर्शवादिता का समावेश होने पर जो गरिमा उभरती है उसी के आधार पर वह प्रसन्न होता और अनुग्रह बरसाता है। प्रतीक पूजा की अनेक विधियां हैं, उन सभी का उद्देश्य एक ही है, मनुष्य के विकारों को हटाकर संस्कारों को उभारकर दैवी अनुग्रह के अनुकूल बनाना। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वमान्य है। प्रश्न है, साधना किसकी की जाए? उत्तर है, जीवन को ही देवता मानकर चला जाए। यह इस हाथ दे उस हाथ ले का क्रम है। इसी आधार पर आत्मसंतोष, लोक सम्मान और देव अनुग्रह जैसे अमूल्य अनुदान प्राप्त होते हैं। अनुक्रमणिका 1 अध्यात्म तत्व ज्ञान का मर्म जीवन साधना 2 त्रिविध प्रयोगों का संगम समागम 3 त्रिविध भवबंधन एवं उनसे मुक्ति 4 सार्थक सुलभ एवं समग्र साधना 5 व्यवहारिक साधना के 4 पक्ष 6 जीवन साधना के सुनिश्चित सूत्र 7 साप्ताहिक और अर्धवार्षिक साधनाएं 8 आराधना और ज्ञान यज्ञ अध्यात्म तत्व ज्ञान का मर्म जीवन साधना। अति निकट और अति दूर की उपेक्षा करना मानव का सहज स्वभाव है। यह उक्ति जीवन संपदा के हर क्षेत्र में लागू होती है। जीवन हम हर घड़ी जीते हैं, पर न तो उसकी गरिमा समझते और न यह सोच पाते हैं कि इसके सदुपयोग से क्या क्या सिद्धियां उपलब्ध हो सकती हैं। प्राणी जन्म लेता और पेट प्रजनन की प्राकृतिक उत्तेजनाओं से विक्षिप्त होकर निर्वाह की जरूरतें पूरी करते हुए दम तोड़ देता है। ऐसे क्षण कदाचित ही कभी आते हैं जब यह सोचा जाता हो कि सृष्टा की तिजोरी का सर्वोपरि उपहार मनुष्य जीवन है, जिसे अनुग्रह पूर्वक यह जीवन दिया गया है। उससे यह आशा की गई है कि वह उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करेगा, अपनी अपूर्णता पूरी करके तुच्छ से महान बनेगा, साथ ही विश्व उद्यान को कुशल माली की तरह सींचते संजोते यह सिद्ध करेगा कि उसे स्वार्थ और परमार्थ के सही रूप का ज्ञान है। स्वार्थ इसमें है कि पशु प्रवृत्तियों की कुसंस्कारिता से पीछा छुड़ाएं और सत् प्रवृत्तियों की आवश्यक मात्रा में अवधारणा करते हुए उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जो धरोहर का सदुपयोग कर सकने के रूप में सामने प्रस्तुत हुई है। जो उसमें उत्तीर्ण होता है वह देवमानव की कक्षा में प्रवेश करता है। अपना ही भला नहीं करता, असंख्यों को अपनी नाव में बिठाकर पार करता है। ऐसों को ही अभिनंदनीय अनुकरणीय महामानव कहा जाता है। तृप्ति तुष्टि शांति के त्रिविध आनंद ऐसों को ही मिलते हैं। मनुष्य जीवन दिव्य सत्ता की एक बहुमूल्य धरोहर है, जिसे सौंपते समय उसकी सत्पात्रता पर विश्वास किया जाता है। मनुष्य के साथ यह पक्षपात नहीं है, वरन ऊंचे अनुदान देने के लिए यह प्रयोग परीक्षण है। अन्य जीवधारी शरीर भर की बात सोचते और क्रिया करते हैं, किंतु मनुष्य को सृष्टा का उत्तराधिकारी युवराज होने के नाते अनेकानेक कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं। उसी में उसकी गरिमा और सार्थकता है। यदि पेट प्रजनन तक लोभ मोह तक उसकी गतिविधियां सीमित रहें तो उसे नरपशु के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा। लोभ मोह के साथ अहंकार और जुड़ जाने पर तो बात और भी अधिक बिगड़ती है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उभरी अनमन्यता अनेक प्रकार के कुचक्र रचती और पतन पराभव के गर्त में गिरती है। अहंता से प्रेरित व्यक्ति अनाचारी बनता है और आक्रामक भी। ऐसी दशा में उसका स्वरूप और भी भयंकर हो जाता है। दुष्ट दुरात्मा एवं नर पिशाच स्तर की आसुरी गतिविधियां अपनाता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन जहां श्रेष्ठ सौभाग्य का प्रतीक था, वहां वह दुर्भाग्य और दुर्गति का कारण ही बनता है। इसी को कहते हैं वरदान को अभिशाप बना लेना। दोनों ही दिशाएं हर किसी के लिए खुली हैं। जो इनमें से जिसे चाहता है उसे चुन लेता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप जो है। साधकों में भिन्नता देखी जाती है। उनके भिन्न भिन्न इष्ट देव उपास्य होते हैं। उनसे अनुग्रह अनुकंपा की आशा की जाती है और विभिन्न मनोकामनाएं पूर्ण करने की अपेक्षा रखी जाती है। इनमें से कितने सफल होते हैं इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पराधीनता की स्थिति में स्वामी की इच्छा पर सब कुछ निर्भर रहता है। सेवक तो अनुनय विनय ही करता रह सकता है, किंतु जीवन देवता के संबंध में यह बात नहीं है। उसकी अभ्यर्थना सही रूप में बन पड़ने पर वह सब कुछ इसी कल्पवृक्ष के नीचे प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी कहीं अन्यत्र से पाने की आशा लगाई जाती है। ब्रह्मांड का छोटा सा रूप पिंड परमाणु है। जो ब्रह्मांड में है वह सब कुछ पदार्थ के सबसे छोटे घटक परमाणु में भी विद्यमान है और सौर मंडल की समस्त क्रिया प्रक्रिया अपने में धारण किए हुए है। इसे विज्ञान वेताओं ने एक स्वर से स्वीकार किया है। इसी प्रतिपादन का दूसरा पक्ष यह है कि परम सत्ता ब्रह्मांडीय चेतना का छोटा किंतु समग्र प्रतीक जीव है। वेदांत दर्शन के अनुसार परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। तत्व दर्शन के अनुसार इसी काय कलेवर में समस्त देवताओं का निवास है। परब्रह्म की दिव्य क्षमताओं का समस्त वैभव जीवब्रह्म के प्रसुप्त संस्थानों में समग्र रूप से विद्यमान है। यदि उन्हें जगाया जा सके तो विज्ञात अतीन्द्रिय क्षमताएं और अविज्ञात दिव्य विभूतियां जागृत, सक्षम एवं क्रियाशील हो सकती हैं। तपस्वी, योगी, ऋषि, मनीषी, महामानव, सिद्ध पुरुष ऐसी ही विभूतियों से संपन्न देखे गए हैं। तथ्य शाश्वत और सनातन है। जो कभी हो चुका है वह अब भी हो सकता है। जीवन देवता की साधना से ही महासिद्धियां प्राप्त होती हैं। कस्तूरी के हिरण जैसी बात है। बाहर खोजने में थकान और खींच ही हाथ लगती है। शांति तब मिलती है जब उस सुगंध का केंद्र अपनी ही नाभि में होने का पता चलता है। परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अन्यत्र खोजबीन करने की योजना व्यर्थ है। वह एक देशकाल तक सीमित नहीं है, कलेवरधारी भी नहीं। उसे अति निकटवर्ती क्षेत्र में देखना हो तो वह अपना अंत करण ही हो सकता है। समग्र जीवन इसी की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। गीताकार ने उस परब्रह्म को श्रद्धा में ही समाहित बताया है और कहा है कि जिसकी जैसी श्रद्धा हो वह वैसा ही है, जो अपने को जैसा मानता है वह वैसा ही बन जाता है। यदि अपने को तुच्छ और हेय समझते रहा जाएगा तो व्यक्तित्व उसी ढांचे में ढल जाएगा। जिसने अपने अंदर में महानता आरोपित की है उसे अपना अस्तित्व मानवी गरिमा से ओतप्रोत दिखाई पड़ेगा। परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। उसमें समस्त विभूतियां विद्यमान हैं। इसी शास्त्रीय वचन को यों भी कहा जा सकता है कि उसका प्रतीक प्रतिनिधि उत्तराधिकार युवराज भी अपने सृजेता की विशेषताओं से संपन्न है। कठिनाई तब पड़ती है जब आत्मविस्मृति का अज्ञानांधकार अपनी सघनता से वस्तुस्थिति को आच्छादित कर लेता है। अंधेरे में झाड़ी को भूत और रस्सी को सांप के रूप में देखा जाता है। जिधर भी कदम बढ़ाया जाए उधर ही ठोकरें लगती हैं, किंतु यदि प्रकाश की व्यवस्था बन जाए तो सब कुछ यथावत दिखाई पड़ेगा। आत्मबोध को उस प्रकाश की व्यवस्था बन जाए तो सब कुछ यथावत दिखाई पड़ेगा। आत्मबोध से उस प्रकाश का उदय माना जाता है जिसमें अपने सही स्वरूप का आभास भी मिलता है और सही मार्ग ढूंढने में भी विलंब नहीं लगता। भेड़ों के झुंड में पले सिंह शावक की कथा सर्वविदित है। अपने ईद गिर्द का वातावरण और प्रचलन मनुष्य को अपने समूह में ही घसीट ले जाता है। पर जब आत्मबोध होता है तब पता चलता है कि आत्मसत्ता शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी के सिद्धांत को अक्षरश चरितार्थ करती है। मनुष्य भटका हुआ देवता है, इस कथन में उसका सही विश्लेषण देखा जा सकता है। यदि भटकाव दूर हो जाए तो समझना चाहिए कि समस्त समस्याओं का हल निकल आया, समस्त भवबंधनों से छुटकारा मिल गया। मोक्ष और कुछ नहीं, अपने संबंध में जो अचिंत्य चिंतनविश भूल हो गई है उससे त्राण पा लेने का परम पुरुषार्थ है। मकड़ी अपने लिए जाला अपने भीतर का द्रव निकालकर स्वयं ही बुनती है, स्वयं ही उसमें उलझती और छटपटाती है, किंतु देखा यह भी गया है कि जब उसे उमंग उठती है तो उस जाले को समेट बटोर कर स्वयं ही निगल भी जाती है। हे जीवन स्वकृत है, जैसा सोचा गया चाहा गया वैसी ही परिस्थितियां बन गईं। अब उसे बदलने का मन हो तो मान्यताओं आकांक्षाओं और गतिविधियों को उलटने की देर है। निकृष्ट को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, क्षुद्र से महान बना जा सकता है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वमान्य है। देखना इतना भर है कि साधना किसकी की जाए। अन्यान्य इष्ट देवों के बारे में कहा नहीं जा सकता कि उनका निर्धारित स्वरूप और स्वभाव वैसा है या नहीं जैसा कि सोचा जाना गया है। इनमें संदेह होने का कारण भी स्पष्ट है। समूची विश्व व्यवस्था एक है। सूर्य चंद्र पवन आदि सार्वभौम है। ईश्वर भी सर्वजनीन है, सर्वव्यापी भी। फिर उसके अनेक रूप कैसे बने, अनेक आकार प्रकार और गुण स्वभाव का उसे कैसे देखा गया। मान्यता यदि यथार्थ है तो उसका स्वरूप सार्वभौम होना चाहिए। यदि वह मतमतांतरों के कारण अनेक प्रकार का होता है तो समझना चाहिए कि यह मान्यताओं की ही चित्र विचित्र अभिव्यक्तियां हैं। ऐसी दशा में सत्य तक कैसे पहुंचा जाए। प्रश्न का सही उत्तर यह है कि जीवन को ही जीवित जागृत देवता माना जाए, उसके ऊपर चढ़े कषाय कलमशों का परिमार्जन करने का प्रयत्न किया जाए। अंगार पर राख की परत जम जाने पर वह काला कलूटा दिख पड़ता है, पर जब वह परत हटा दी जाती है तो भीतर छिपी अग्नि स्पष्ट दिखने लगती है। साधना का उद्देश्य इन आवरण आच्छादनों को हटा देना भर है। इसे प्रसुप्ति को जागरण में बदल देना भी कहा जा सकता है। अध्यात्म विज्ञान के तत्ववेताओं ने अनेक प्रकार के साधना उपचार बताए हैं। यदि गंभीरता पूर्वक उनका विश्लेषण विवेचन किया जाए तो प्रतीत होगा कि यह प्रतीक पूजा और कुछ नहीं, मात्र आत्मपरिष्कार का ही बालबोध स्तर का प्रतिपादन है। पात्रता और प्रखरता का अभिवर्धन ही योग और तप का लक्ष्य है। पात्रता एक चुंबक है जो अपने उपयोग की वस्तुओं शक्तियों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित करती रहती है। मनुष्य में विकसित हुए देवत्व का चुंबक संसार में संव्याप्त शक्तियों और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। जलाशय गहरे होते हैं, सब ओर से पानी सिमटकर एक होने के लिए उनमें जा पहुंचता है। समुद्र में सभी नदियां जा मिलती हैं, यह उसकी गहराई का ही प्रतिफल है। पर्वत की चोटियों पर यदि शील की अधिकता से बर्फ जम भी जाए तो वह गर्मी पड़ते ही पिघल जाता है और नदियों से होकर समुद्र में पहुंचकर रुकता है। इसी को कहते हैं पात्रता। पात्रता का अभिवर्धन ही साधना का मूलभूत उद्देश्य है। ईश्वर को न किसी की मनोहार चाहिए और न उपहार। वह छोटी मोटी भेंट पूजाओं से या स्तवन गुणगान से प्रसन्न नहीं होता। ऐसी प्रकृति तो क्षुद्र लोगों की होती है। भगवान का ऐसा मानस नहीं। वह न्यायनिष्ठ और विवेकवान है। व्यक्ति में उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश होने पर जो गरिमा उभरती है उसी के आधार पर वह प्रसन्न होता और अनुग्रह बरसाता है। उसे फुसलाने का प्रयास करने वालों की बालक्रीड़ा निराशा ही प्रदान करती है। ऋषि ने पूछा, किसमें देवाय हविषा विधेम, अर्थात हम किस देवता के लिए भजन करें? उसका सुनिश्चित उत्तर है आत्मदेव के लिए। अपने आप को चिंतन, चरित्र और व्यवहार की कसौटियों पर खरा सिद्ध करना ही वह स्थिति है जिसे स्वतंत्र सोना कहते हैं। पेड़ पर फल फूल ऊपर से टपक कर नहीं लगते, वरन जड़ें जमीन से जो रस खींचती हैं उसी से वृक्ष बढ़ता है और फलता फूलता है। जड़ें अपने अंदर है जो समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, जिनके आधार पर आध्यात्मिक महानता और भौतिक प्रगतिशीलता के उभयपक्षीय लाभ मिलते हैं। यही उपासना, साधना और आराधना का समन्वित स्वरूप है। यही वह साधना है जिसके आधार पर सिद्धियां और सफलताएं सुनिश्चित बनती हैं। दूसरे के सामने हाथ पसारने, गिड़गिड़ाने भर से पात्रता के अभाव में कुछ प्राप्त नहीं होता, भले ही वह दानी परमेश्वर ही क्यों न हो। कहा गया है कि ईश्वर केवल उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करने को तत्पर हैं। आत्मपुरस्कार, आत्मशोधन यही जीवन साधना है। इसी को परम पुरुषार्थ कहा गया है। जिन्होंने इस लक्ष्य को समझा तो जानना चाहिए कि उन्होंने अध्यात्म तत्वज्ञान का रहस्य और मार्ग हस्तगत कर लिया, चरम लक्ष्य तक पहुंचने का राजमार्ग पा लिया। त्रिविध प्रयोगों का संगम समागम, गंगा यमुना सरस्वती के मिलन से तीर्थराज त्रिवेणी संगम बनता है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवाधिदेव हैं। इसी प्रकार सरस्वती लक्ष्मी काली शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। मृत्यु लोक, पाताल और स्वर्ग ये तीन लोक हैं। गायत्री के तीन चरण हैं जिन्हें वेदमाता देवमाता विश्वमाता के नाम से जाना जाता है। जीवन सत्ता के भी तीन पक्ष हैं जिन्हें चिंतन चरित्र और व्यवहार कहते हैं। इन्हीं को ईश्वर जीव प्रकृति कहा गया है। तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट करना हो तो इन्हें आत्मा शरीर और संसार कह सकते हैं। यह त्रिवर्ग ही हमें सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उद्भव अभिवर्धन और विलन के रूप में प्रकृति की अनेकानेक हलचलें इसी आधार पर चलती रहती हैं। जीवन तीन भागों में बंटा हुआ है, वन आत्मा, टू शरीर और थ्री पदार्थ संपर्क। शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाने का प्रयत्न किया जाता है, आत्मा को परिष्कृत और सुसंस्कृत बनाया जाता है तथा संसार में से वैभव और विलास के सुविधा साधन संजोए जाते हैं। परिवार समेत समूचा संपर्क क्षेत्र भी इसी परिधि में आता है। जीवन साधना का समग्र रूप वह है जिसमें इन तीनों का स्तर ऐसा बना रहे जिससे प्रगति और शांति की सुव्यवस्था बनी रहे। इन तीनों में प्रधान चेतना है जिसे आत्मा भी कह सकते हैं। दृष्टिकोण इसी के स्तर पर विनिर्मित होता है। इच्छाओं भावनाओं मान्यताओं का रुझान किस ओर हो, दिशाधारा और रीति नीति क्या अपनाई जाए, इसका निर्णय अंत करण ही करता है। उसी के अनुरूप गुण कर्म स्वभाव बनते हैं। किस दिशा में चला जाए, क्या किया जाए, इसके निमित्त संकल्प उठना और प्रयत्न बन पड़ना भी आत्मिक क्षेत्र का निर्धारण है। इसीलिए आत्मबल को जीवन की सर्वोपरि संपदा एवं सफलता माना गया है। इसी के आधार पर संयमजन्य स्वास्थ्य में प्रगति होती है। मन में ओजस तेजस और वर्चस्कारी प्रतिभा चमकती है। बहुमुखी संपदाएं इसी पर निर्भर हैं। इसलिए जीवन साधना का अर्थ आत्मिक प्रगति होता है। वह गिरती उठती है तो समूचा जीवन गिरने उठने लगता है। इसलिए जीवन साधना को आत्मोत्कर्ष प्रधान मानना चाहिए। उसी के आधार पर शरीर व्यवस्था साधन संचय और जनसंपर्क का ढांचा खड़ा करना चाहिए। ऐसा करने पर तीनों ही क्षेत्र सुव्यवस्थित बनते रहते हैं और जीवन को समग्र प्रगति सफलता या सार्थकता के लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। आत्मिक प्रगति का सार्वभौम उपाय एक ही है, क्रियाकृतियों के माध्यम से आत्मशिक्षण। इसे प्रतीक पूजा भी कह सकते हैं। मनुष्य के मानस की बनावट ऐसी है कि वह किन्हीं जानकारियों से अवगत तो हो जाता है पर उसे व्यवहार में उतारना क्रिया अभ्यास के बिना संभव नहीं होता। यह अभ्यास ही वे उपासना कृत्य है जिन्हें योगाभ्यास तपश्चर्या जप ध्यान प्राणायाम प्रतीक पूजा आदि के नाम से जाना जाता है। इनमें अंग संचालन मन का केंद्रीकरण एवं उपचार सामग्री का प्रयोग ये तीनों ही आते हैं। अनेक धर्म संप्रदायों में पूजा विधान अलग अलग प्रकार से हैं तो भी उनका अभिप्राय और उद्देश्य एक ही है, आत्मशिक्षण भाव संवेदनाओं का उन्नयन। यदि यह लक्ष्य जुड़ा हुआ न होता तो उसका स्वरूप मात्र चिन्ह पूजा जैसा लकीर पीटने जैसा रह जाता है। निष्प्राण शरीर का मात्र आकार तो बना रहता है पर वह कुछ कर सकने में समर्थ नहीं होता। इसी प्रकार ऐसे पूजा कृत्य जिसमें साधक की भाव संवेदना के उन्नयन का उद्देश्य पूरा न होता हो, आत्मशिक्षण और आत्मिक प्रगति का प्रयोजन पूरा न कर सकेंगे। इन दिनों यही चल रहा है। लोग मात्र पूजा कृत्यों के विधान भर किसी प्रकार पूरे करते हैं और साथ भाव संवेदनाओं को जोड़ने का प्रयत्न नहीं करते, आवश्यकता तक नहीं समझते। फलत उनमें संलग्न लोगों में से अधिकांश के जीवन में विकास के कोई लक्षण नहीं दिख पड़ते। कृत्यों से देवता को प्रसन्न करके उनसे मन चाहे वरदान मांगने की बात की कोई तुक नहीं, इसलिए उस बेतुकी प्रक्रिया का अभीष्ट परिणाम हो भी कैसे सकता है। एक ही देवता के दो भक्त परस्पर शत्रु भी हो सकते हैं, दोनों अपनी अपनी मर्जी की याचना कर सकते हैं। ऐसी दशा में देवता असमंजस में फंस सकता है कि किसकी मनोकामना पूरी करें किसकी न करें। फिर देवता पर भी रिश्वतखोर होने का, चापलूसी पसंद, सामंत जैसा स्तर होने का आरोप लगता है। कितने लोग हैं जो पूजा कृत्य अपनाने के साथ इस गंभीरता में उतरते हैं और यथार्थता को समझने का प्रयत्न करते हैं। अंधी भेड़चाल अपनाने पर समय की बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ हस्तगत हो भी नहीं सकता। हमें यथार्थता समझनी चाहिए और यह यथार्थवादी क्रम अपनाना चाहिए जिससे आत्मिक प्रगति के लक्ष्य तक पहुंचा और उसके साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई सर्वतोमुखी प्रगति का लाभ उठाया जा सके। शरीर पोषण के लिए तीन अनिवार्य साधनों की आवश्यकता होती है, -1 आहार, 2 जल और 3 वायु। ठीक इसी प्रकार आत्मिक प्रगति की आवश्यकता पूरी करने के लिए तीन माध्यम अपनाने होते हैं, 1 उपासना, 2 साधना और 3 आराधना। इन शब्दों का और भी अधिक स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना चाहिए। उपासना का अर्थ है निकट बैठना। किसके? ईश्वर के। ईश्वर निराकार है, इसकी प्रतिमा या छवि तो ध्यान धारणा की सुविधा के लिए विनिर्मित की जाती है। मानवीय अंतकरण के साथ उसकी घनिष्ठता उत्कृष्ट चिंतन के आदर्शवादी भाव संवेदना के रूप में ही होती है। यही भक्ति का, ईश्वर सान्निध्य का, ईश्वर दर्शन का वास्तविक रूप है। यदि साकार रूप में उसका चिंतन करना हो तो किसी कल्पित प्रतिमा में इन्हीं दिव्य संवेदनाओं के होने की मान्यता और उसके साथ अविच्छिन्न जुड़े होने के रूप में भी किया जा सकता है। ऐसे महामानव जिन्होंने आदर्शों का परिपालन और लोकमंगल के लिए समर्पित होने के रूप में अपने जीवन का उत्सव किया, उन्हें भी प्रतीक माना जा सकता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी आदि को भगवान का अंशावतार कहा जा सकता है। उन्हें इष्ट मानकर उनके ढांचे में ढलने का प्रयत्न किया जा सकता है। इस निमित्त किया गया पूजा प्रयास उपासना कहा जा जाएगा। दूसरा चरण है साधना, जिसका पूरा नाम है जीवन साधना। इसे चरित्र निर्माण भी कहा जा सकता है। चिंतन में भाव संवेदनाओं का समावेश तो उपासना क्षेत्र में चला जाता है, पर शरीरचर्या की धारा विधा जीवन साधना में आती है। इसमें आहार विहार, रहन सहन, संयम, कर्तव्यों का परिपालन, सद्गुणों का अभिवर्धन, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन आदि आते हैं। संयमशील, अनुशासित और सुव्यवस्थित क्रियाकलाप अपनाना जीवन साधना कहा जाएगा। जिस प्रकार जंगली पशु को सर्कस का प्रशिक्षित कलाकार बनाया जाता है, जिस प्रकार किसान उबड़ खाबड़ जमीन को समतल करके उर्वर बनाता है, जिस प्रकार माली सुनियोजित ढंग से अपना उद्यान लगाता है और सुरम्य बनाता है, उसी प्रकार जीवन का वैभव का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने लगना जीवन साधना है। व्यक्तित्व को पवित्र, प्रामाणिक, प्रखर बनाने की प्रक्रिया जीवन साधना है। यह बन पड़ने पर ही आत्मा में परमात्मा का अवतरण संभव होता है। धुले हुए कपड़े की ही रंगाई ठीक तरह होती है। चरित्रवान व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में भगवत भक्त बनते हैं। दैवी वरदान ऐसे ही लोगों पर बरसते हैं। स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, तुष्टि, तृप्ति, शांति जैसी दिव्य विभूतियों से मात्र चरित्रवान ही संपन्न होते हैं। उनमें सद्भावना, शालीनता, सुसंस्कारिता के सभी लक्षण उभरे हुए दिखते हैं। सामान्य स्थिति में रहते हुए भी ऐसे ही लोग महामानव, देवमानव बनते हैं। तीसरा चरण है आराधना, इसे अभ्यर्थना, अर्चन भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसी को पुण्य, परमार्थ, लोकमंगल, जन कल्याण आदि भी कहते हैं। यह संसार विराट ब्रह्म का साकार स्वरूप है। इसमें निवास करने वाले प्राणियों और पदार्थों का, परिस्थितियों का सुनियोजन करने में संलग्न रहना आराधना है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य प्रकारांतर से सभी का ऋणी है। इसकी भरपाई करने के लिए उसे परमार्थप्रायण होना ही चाहिए। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के चार आधार सर्वतोमुखी प्रगति के लिए आवश्यक माने गए हैं। जीवन साधना में स्वाध्याय की, संयमशीलता की और लोकमंगल के लिए निरंतर समयदान, अंशदान लगाते रहने की आवश्यकता पड़ती है। सेवा कार्यों के लिए समयदान, श्रमदान अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। इसके बिना पुण्य संचय की बात बनती ही नहीं। संयम तो अपने शरीर, मन और स्वभाव में स्वयं भी साधा जा सकता है, पर सेवा धर्म अपनाने के लिए समयदान के अतिरिक्त साधनदान की भी आवश्यकता पड़ती है। उपार्जित आजीविका का सारा भाग पेट परिवार के लिए ही खर्च नहीं करते रहना चाहिए, वरन उसका एक महत्वपूर्ण अंश लोक मंगल के लिए भी नियमित और निश्चित रूप से निकालते रहना चाहिए। उपासना, साधना और आराधना को, चिंतन, चरित्र और व्यवहार को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को नित्य कार्य में नित्य नियम में सम्मिलित रखना चाहिए। उनमें से किसी एक को यदाकदा कर लेने से काम नहीं चलता। भोजन, श्रम और शयन ये तीनों ही नित्य करने पड़ते हैं। इनमें से किसी को यदाकदा न्यूनाधिक मात्रा में मनमर्जी से कर लिया जाया करे तो उस अस्तव्यस्तता के रहते न तो स्वास्थ्य ठीक रह सकता है और न व्यवस्थित उपक्रम चल सकता है। फिर किसी प्रयोजन में सफल हो सकना तो बन ही किस प्रकार पड़े। जीवन एक सुव्यवस्थित तथ्य है, वह न तो अस्तव्यस्त है और न कभी कुछ करने कभी न करने जैसा मनमौजीपन। पशु पक्षी तक एक नियमित प्रकृति व्यवस्था के अनुरूप जीवन यापन करते हैं। फिर मनुष्य तो सृष्टि का मुकुटमणि है, उसके ऊपर मात्र शरीर निर्वाह का ही नहीं कर्तव्यों और उत्तरदायित्व के परिपालन का अनुशासन भी है। उसे मानवीय उदारता के अनुरूप मर्यादाएं पालनी और वर्जनाएं छोड़नी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, वह पुण्य परमार्थ भी विशेष पुरुषार्थ के रूप में अपनाना पड़ता है जिसके लिए सृष्टा ने अपना अजस्र अनुदान देते हुए आशा एवं अपेक्षा रखी है। इतना सब बन पड़ने पर ही उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है जिसे ईश्वर की प्राप्ति या महानता की उपलब्धि कहा जाता है। जीवन साधना नकद धर्म है, इसके प्रतिफल प्राप्त करने के लिए लंबे समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इस हाथ दे उस हाथ ले का नकद सौदा इस मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर फलित होता रहता है। एक कदम आगे बढ़ने पर मंजिल की दूरी उतनी फुट कम होती है, साथ ही जो पिछड़ापन था वह पीछे छूटता है। इसी प्रकार जीवन साधना यदि तथ्यपूर्ण, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण स्तर पर की गई है तो इसका प्रतिफल दो रूप में हाथों हाथ मिलता चलता है। एक संचित पशु प्रवृत्तियों का अभ्यास छूटता है, वातावरण की गंदगी से ऊपर चढ़े कषाय कलमश घटते हैं। दूसरा लाभ यह होता है कि नरपशु से नरदेव बनने के लिए जो प्रगति करनी चाहिए उसकी व्यवस्था सही रूप से बन पड़ती है। स्वयं को अनुभव होता है कि व्यक्तित्व निरंतर उच्च स्तरीय बन रहा है। उत्कृष्टता और आदर्शवादिता की दोनों ही उपलब्धियां निरंतर हस्तगत हो रही हैं। यही है वह उपलब्धि जिसे जीवन की सार्थकता, सफलता एवं मनुष्य में देवत्व का प्रत्यक्ष अवतरण कहते हैं। तत्वज्ञान की भाषा में इसी को ईश्वर प्राप्ति, भव बंधनों से मुक्ति, परम सिद्धि अथवा स्वर्ग सोपान में प्रविष्टि कहा जाता है। इन सहज उपलब्धियों से वंचित इसलिए रहना पड़ता है कि न तो जीवन साधना का दर्शन ठीक तरह समझा जाता है और न जानकारी के अभाव में सही प्रयोग का अभ्यास बन पड़ता है। त्रिविध भवबंधन एवं उनसे मुक्ति। साधना से तात्पर्य है साध लेना, सधा लेना। पशु प्रशिक्षक यही करते हैं। अंगड़ एवं उच्छृंखल पशुओं को वे एक रीति नीति सिखाते हैं, उनको अभ्यस्त बनाते हैं और उस स्थिति तक पहुंचाते हैं जिसमें उस असंस्कृत प्राणी को उपयोगी समझा जा सके, उसके बड़े हुए स्तर का मूल्यांकन हो सके, पालने वाला अपने को लाभान्वित हुआ देख सके, सिखाने वाला भी अपने प्रयास की सार्थकता देखते हुए प्रसन्न हो सके। देखा यह जाता है कि भक्त भगवान को साधता है, उसको मूर्ख समझते हुए उसकी गलतियां निकालता है, तरह तरह के उलाहने देता है, साथ ही गिड़गिड़ाकर, नाक रगड़कर, खीसे निपोकर अपना अपना अनुचित उल्लू सीधा करने के लिए जाल जंजाल बुनता है, प्रशंसा के पुल बांधता है, छिटपुट भेंट चढ़ाकर उसे फुसलाने का प्रयत्न करता है। समझा जाता है कि सामान्य लोगों से व्यवहारिक जगत में आदान प्रदान के आधार पर ही लेन देन चलता है, पर ईश्वर या देवता ऐसे हैं जिन्हें वाणी की वाचालता तथा शारीरिक मानसिक उचक मचक करने भर से विश्ववर्ती नहीं किया जा सकता है। यह दार्शनिक भूल मनुष्य को एक प्रकार से छिपा हुआ नास्तिक बना देती है। प्रकट नास्तिक वे हैं जो प्रत्यक्षवाद के आधार पर ईश्वर की सत्ता स्पष्ट दृष्टिगोचर न होने पर उसकी मान्यता से इनकार कर देते हैं। दूसरे छिपे नास्तिक वे हैं जो उससे पक्षपात की, मुफ्त में लंबी चौड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते रहते हैं। मनुष्य विधि व्यवस्था को तोड़ता छोड़ता रहता है, पर ईश्वर के लिए यह संभव नहीं कि अपनी बनाई कर्मफल व्यवस्था का उल्लंघन करे या दूसरों को ऐसा करने के लिए उत्साहित करे। तथाकथित भक्त लोग ऐसी ही आशाएं किया करते हैं, अंततः उन्हें निराश ही होना पड़ता है। इस निराशा की खीज और थकान से वे या तो साधना विधान को मिथ्या बताते हैं या ईश्वर के निष्ठुर होने की मान्यता बनाते हैं। कई पाखंडी कुछ भी हस्तगत न होने पर भी प्रवंचना रचते हैं और नकटा संप्रदाय की तरह अपनी सिद्धि सफलता का बखान करते हैं। आज का आस्तिकवाद इसी विडंबना में फंसा हुआ है और वह लगभग नास्तिकवाद के स्तर पर जा पहुंचा है। आवश्यकता है भ्रांतियों से निकलने और यथार्थता को अपनाने की। इस दिशा में मान्यताओं को अग्रगामी बनाते हुए हमें सोचना होगा कि जीवन साधना ही आध्यात्मिक स्वस्थता और बलिष्ठता है। इसी के बदले प्रत्यक्ष जीवन में मरण की प्रतीक्षा किए बिना स्वर्ग, मुक्ति और सिद्धि का रसास्वाद करते रहा जा सकता है। उन लाभों को हस्तगत किया जा सकता है जिनका उल्लेख अध्यात्म विधा की महत्ता बताते हुए शास्त्रकारों ने विस्तार पूर्वक किया है। सच्चे संतों भक्तों का इतिहास भी विद्यमान है। खोजने पर प्रतीत होता है कि पूजा पाठ भले ही उनका न्यूनाधिक रहा है, पर उन्होंने जीवन साधना के क्षेत्र में परिपूर्ण जागरूकता बरती। इसमें व्यक्तिक्रम नहीं आने दिया, न आदर्श की अवज्ञा की और न उपेक्षा बरती। भाव संवेदनाओं में श्रद्धा, विचार बुद्धि में प्रज्ञा और लोक व्यवहार में शालीन सद्भावना की निष्ठा अपनाकर कोई भी सच्चे अर्थों में जीवन देवता का सच्चा साधक बन सकता है। उसका उपहार वरदान भी उसे हाथों हाथ मिलता चला जाता है। ऋषियों, मनीषियों, संत सुधारकों और वातावरण में ऊर्जा उभार देने वाले महामानवों की अनेकानेक साक्षियां विश्व इतिहास में भरी पड़ी हैं। इनमें से प्रत्येक को हर कसौटी पर जांच परख कर देखा जा सकता है कि उनमें से हर एक को अपना व्यक्तित्व उत्कृष्टता की कसौटी पर खरा सिद्ध करना पड़ा है। इससे कम में किसी को भी न आत्मा की प्राप्ति हो सकी, न परमात्मा की, न ऐसों का लोक बना और न परलोक। पूजा को श्रृंगार माना जाता रहा है। स्वास्थ्य वास्तविक सुंदरता है। ऊपर से स्वस्थ व्यक्ति को वस्त्राभूषणों से, प्रसादन सामग्री से सजाया भी जा सकता है। इसे सोने में सुगंध का संयोग बन पड़ा माना जा सकता है। जीवन साधना समग्र स्वास्थ्य बनाने जैसी विधा है। उसके ऊपर पूजा पाठ का श्रृंगार सजाया जाए तो शोभा और भी अधिक बढ़ेगी। इसमें सुरुचि तो है, किंतु यह नहीं माना जाना चाहिए कि मात्र श्रृंगार साधनों के सहारे किसी जीर्ण जर्जर उगंड या मृत शरीर को सुंदर बना दिया जाए तो प्रयोजन सद सकता है। इससे तो उल्टा उपहास ही बढ़ता है। इसके विपरीत यदि कोई हृष्ट पुष्ट पहलवान मात्र लंगोट पहनकर अखाड़े में उतरता है तो भी उसकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार जीवन को सुसंस्कृत बना लेने वाले यदि पूजा अर्चना के लिए कम समय निकाल पाते हैं तो भी काम चल जाता है। अध्यात्म विज्ञान के साधकों को अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन करना पड़ता है। उन्हें सोचना होता है कि मानव जीवन की बहुमूल्य धरोहर का इस प्रकार उपयोग करना है जिससे शरीर का निर्वाह लोक व्यवहार भी चलता रहे, पर साथ ही आत्मिक अपूर्णता को पूरी करने का चरम लक्ष्य भी प्राप्त हो सके। ईश्वर के दरबार में पहुंचकर सीना तानकर यह कहा जा सके कि जो अमानत जिस प्रयोजन के लिए सौंपी गई थी उसे उसी हेतु सही रूप में प्रयुक्त किया गया। इस मार्ग में सबसे बड़ी रुकावटें तीन हैं। इन्हीं को रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ कहा गया है। यह दैवी भागवत के महिषासुर, मधुकैटभ, रकबीज हैं। ये प्रायः साथ लगे रहते हैं और पीछा नहीं छोड़ते। इन्हीं के कारण मनुष्य पतन और पराभव के गर्त में जा गिरता है। पशु, प्रेत और पिशाच की जिंदगी जीता है। नर वानर और नर पामा के रूप में इन्हीं के चंगुल में फंसे हुए लोगों को देखा जाता है। ये तीन है लोभ, मोह एवं अहंकार। वासना, तृष्णा और कोत्सा इन्हीं के कारण उत्पन्न होती है। लोक विजय के लिए सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अपनाना पड़ता है। औसत नागरिक स्तर के निर्वाह में संतोष करना पड़ता है। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई पर निर्भर रहना पड़ता है। लालची के लिए अनीति अपनाए बिना तृष्णा की पूर्ति कर सकना किसी भी प्रकार संभव नहीं होता। जो व्यक्ति विलास में अधिक खर्च करता है वह प्रकारांतर से दूसरों को उतना ही अभावग्रस्त रहने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने परिग्रह को पाप बताया है। विलासी, संग्रही, अपव्ययी की भी ऐसी निंदा की गई है। अधिक कमाया जा सकता है पर उसमें से निजी निर्वाह में सीमित व्यय करके शेष बचत कर गिरों को उठाने, उठों को उछालने और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में लगाया जाना चाहिए। राजा जनक जैसे उदाहरणों की कमी नहीं। मितव्ययी अनेक दुर्व्यसनों और अनाचारों से बचता है। ऐसी हविष उसे सताती नहीं जिसके लिए अनाचार पर उतारू होना पड़े। साधु ब्राह्मणों की यही परंपरा रही है। सज्जनों की शालीनता भी उसी आधार पर फलती फूलती रही है। जीवन साधना के उस प्रथम अवरोध लोभ को नियंत्रित कराने वाला दृष्टिकोण हर जीवन साधना के साधक को अपनाना ही चाहिए। मोह वस्तुओं से भी होता है और व्यक्तियों से भी। छोटे दायरे में आत्मीयता सीमाबद्ध करना ही मोह है। उसके रहते हृदय की विशालता चरितार्थ ही नहीं होती। अपना शरीर और परिवार ही सब कुछ दिखाई पड़ता है। उन्हीं के लिए मरने खपने के कुचक्र में फंसे रहना पड़ता है। आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के दो आत्मवादी सिद्धांत हैं। इनमें से एक को भी मोहग्रस्त कार्यान्वित नहीं कर सकता। इसलिए अपने में सबको और सब में अपने को देखने की दृष्टि विकसित करना जीवन साधना के लिए आवश्यक माना गया है। परिवार छोटे से छोटा रखा जाए। पूर्ववर्ती अभिभावकों, बड़ों और आश्रितों के ऋणों को चुकाने की ही व्यवस्था नहीं बन पाती तो नए अतिथियों को क्यों नियोग बुलाया जाए। समय की विषमता को देखते हुए अनावश्यक बच्चे उत्पन्न कर परिवार का भार बढ़ाना परले सिरे की भूल है। समान विचारों का साथी सहयोगी मिले तो विवाह करने में हर्ज नहीं, पर वह एक दूसरे की सहायता सेवा करते हुए प्रगतिपथ पर अग्रसर होने के लिए ही किया जाना चाहिए। जिन्हें संतान की बहुत ललक हो वे निर्धनों के बच्चे पालने के लिए ले सकते हैं। परिवार को स्वावलंबी और सुसंस्कारी बनाना पर्याप्त है। औलाद के लिए विपुल संपदा उत्तराधिकार में छोड़ मरने की भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। मुफ्त का माल किसी को भी हजम नहीं होता। वह दुर्बुद्धि और दुर्गुण ही उत्पन्न करता है। संतान पर यह भार लदेगा तो उसका अपकार ही होगा। पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाया जाना चाहिए, पर उस कीचड़ में इतनी गहराई तक नहीं फंसना चाहिए कि उबर सकना संभव न हो सके। मोह को भव बंधनों में से प्रमुख माना गया है। उसी संकीर्ण दायरे में जकड़े हुए लोग लोकमंगल का कर्तव्य पालन कर ही नहीं पाते। जिन्हें सभी के प्रति पारिवारिकता का भाव अपनाने का अवसर मिलता है, उनके लिए हर किसी को आत्मा मानने का, सभी की सेवा सहायता करने का आनंद मिलता है। अहंकार मोटे अर्थों में घमंड समझा जाता है। करना, उद्धत अशिष्ट व्यवहार करना, क्रोधग्रस्त रहना अहंकार की निशानी है, पर वस्तुतः वह और भी अधिक सूक्ष्म और व्यापक है। फैशन, सजधज, श्रृंगार, ठाट बाट, अपव्यय, सस्ता बड़प्पन आदि अहंकार परिवार के ही सदस्य हैं। लोग शेखीखोरी के लिए ढेरों समय, श्रम और पैसा खर्च करते देखे जाते हैं। यह भी एक प्रकार का नशा है, जिसमें अपने को भले ही मजा आता हो, पर हर विचारशील को इसमें क्षुद्रता की, बचकानेपन की ही गंध आती है। इस विडंबना के लिए चित्र विचित्र प्रवंचनाएं रचनी पड़ती हैं। ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न करने में भी अहंता की ही प्रमुख भूमिका रहती है। कलह और विग्रह प्रायः उसी कारण उत्पन्न होते हैं। आदमी की विशिष्टता अपनी विनयशीलता एवं दूसरों के सम्मान में निहित है। उसी कसौटी पर किसी की सज्जनता परखी जाती है। अहंकारी से उन सद्गुणों में से एक भी नहीं निप पाता। अहंभाव को आत्मघाती शत्रु माना गया है। ऐसे लोगों से आत्मसाधना तो बन ही नहीं पाती। उन पर उद्दंडता व दूसरों को नीचा दिखाने का भूत सदैव चढ़ा रहता है और दूसरों को गिराने एवं नीचा दिखाने की ही ललक उठती रहती है। ऐसे लोग अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने में ही लगे रहते हैं। इन परिस्थितियों में आत्मोत्कर्ष और आत्मपरिष्कार कैसे बन पड़े? लोभ, मोह और अहंकार के तीन भारी पत्थर जिन्होंने सिर पर लाद रखे हैं, उनके लिए जीवन साधना की लंबी और ऊंची मंजिल पर चल सकना, चल पड़ना असंभव हो जाता है। भले ही कोई कितना पूजा पाठ क्यों न करता रहे, जिन्हें तथ्यान्वेषी बनना है, उन्हें इन तीन शत्रुओं से अपना पीछा छुड़ाना ही चाहिए। हल्की वस्तुएं पानी पर तैरती हैं, किंतु भारी होने पर वे डूब जाती हैं। जो लोभ, मोह और अहंकार रूपी भारी पत्थर अपनी पीठ पर लादे हुए हैं, उन्हें भवसागर में डूबना ही पड़ेगा। जिन्हें तरना, तैरना है, उन्हें इन तीनों भारों को उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। अनेकानेक दोष, दुर्गुणों, कषाय, कलंशों का वर्गीकरण विभाजन करने पर उनकी संख्या हजारों हो सकती है, पर उनके मूल उद्गम यही तीन लोभ, मोह और अहंकार हैं। इन्हीं भव बंधनों से मनुष्य के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर जकड़े पड़े हैं। इनका उन्मूलन किए बिना आत्मा को उस स्वतंत्रता का लाभ नहीं मिल सकता, जिसे मोक्ष कहते हैं। इन तीनों पर कड़ी नजर रखी जाए, इन्हें अपना संयुक्त शत्रु माना जाए, इनसे पीछा छुड़ाने के लिए हर दिन नियमित रूप से प्रयास जारी रखा जाए। एकदम तो सब कुछ सही हो जाना कठिन है, पर उन्हें नित्य प्रति यथासंभव घटाते हटाते चलने की प्रक्रिया जारी रखने पर सुधार क्रम में सफलता मिलती ही चलती है, और एक दिन ऐसा भी आता है जब इनसे पूरी तरह छुटकारा पाकर बंधन मुक्त हुआ जा सके। सार्थक, सुलभ है समग्र साधना। पदार्थ से शरीर और आत्मा का महत्व अधिक है। इसी प्रकार समृद्धि, संपन्नता का, प्रगति और योग्यता का, आत्मिक प्रखरता, प्रतिभा का स्तर भी क्रम से एक सीढ़ी ऊंचाई का समझा जा सकता है। आंतरिक आस्थाएं ही वे विभूतियां हैं जो व्यक्ति के चिंतन, चरित्र और व्यवहार को परिष्कृत करती हैं। व्यक्तित्व को प्रखर, प्रामाणिक एवं प्रतिभावान बनाती हैं। इसी आधार पर वे क्षमताएं उभरती हैं जो अनेकानेक सफलताओं की उद्गम स्रोत हैं। आत्मबल के आधार पर अन्य सभी बल हस्तगत किए जा सकते हैं। इसी के आधार पर उपलब्धियों का सदुपयोग बन पड़ता है। परिस्थितियों की प्रतिकूलता रहने पर भी उन्हें व्यक्तित्व की उत्कृष्टता के आधार पर अनुकूल बनाया जा सकता है। संसार के इतिहास में ऐसे अगणित व्यक्ति हुए हैं जिनकी प्रारंभिक परिस्थितियां गई गुजरी थी। निर्वाह के साधनों तक की कमी पड़ती थी, फिर प्रगति के सरंजाम जुट सकना और भी कठिन, लगभग असंभव दीख पड़ता था। इतने पर भी वे व्यक्तित्व की प्रामाणिकता के आधार पर सभी के लिए विश्वस्त एवं आकर्षक बन गए। उनका चुंबकत्व व्यक्तियों, साधनों और परिस्थितियों को अनुकूल बनाता चला गया, और वे अपने पुरुषार्थ के साथ उस सद्भाव का तालमेल बिठाते हुए दिन दिन ऊंचे उठते चले गए और अंततः सफलता के सर्वोच्च शिखर तक जा पहुंचने में समर्थ हुए। ऐसे अवसरों पर व्यक्तित्व की उत्कृष्टता को ही श्रेय दिया जाता है। इस उपलब्धि को ही आत्मबल का चमत्कार कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी अनेकानेक प्रसंग सामने आते रहते हैं जिसमें सभी अनुकूलताएं रहने पर भी लोग अपनी दुर्बुद्धि के कारण दिन दिन घटते और गिरते चले गए। पूर्वजों के कमाए धन को दुर्व्यसनों में उड़ा दिया, आलस्य और प्रमाद में ग्रसित रहकर अपनी क्षमताओं और संपदाओं को गलाते चले गए। कई अनाचार के मार्ग पर चल पड़े और दुर्गति भुगतने के लिए मजबूर हुए। इसमें उनके मानस की गुण, कर्म, स्वभाव की निकृष्टता ने अनेक सुविधाएं रहते हुए भी उन्हें असुविधा भरी परिस्थितियों तक पहुंचा दिया। चेतना की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य ही रेल, जहाज, कारखाने आदि बनाता है, विज्ञान के नित नए आविष्कार करता है, यहाँ तक कि धर्म और दर्शन, आचार और विचार भी उसी के रचे हुए हैं। ईश्वर की साकार रूप में कल्पना तथा स्थापना करना भी उसी का बुद्धि कौशल है। इस अंगड़ धरातल को सुविधाओं, सुंदरताओं, उपलब्धियों से भरापूरा बनाना भी मनुष्य का ही काम है। यहाँ मनुष्य शब्द में किसी शरीर या वैभव को नहीं समझा जाना चाहिए। विशेषताएं चेतना के साथ जुड़ी होती हैं। इसे भी प्रयत्न पूर्वक उठाया या गिराया जा सकता है। शरीर को बलिष्ठ या दुर्बल बना लेना प्रायः मनुष्य की अपनी रीति नीति पर निर्भर रहता है। संपन्न और विपन्न भी लोग अपनी हरकतों से ही बनते हैं। उठना और गिरना अपने हाथ की बात है। मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता आप कहा जाता है। यहाँ व्यक्ति का मतलब आत्मचेतना से ही समझा जाना चाहिए, वही प्रगतिशीलता का उद्गम है। इसी क्षेत्र में पतन पराभव के विषैले बीजांकुर भी जमे होते हैं। सद्गुणी लोग अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी सुख शांति का वातावरण बना लेते हैं। अंत चेतना से समुन्नत होने पर समूचा वातावरण, संपर्क क्षेत्र सुख शांति से भर जाता है। इसके विपरीत जिनका मानस दोष दुर्गुणों से भरा हुआ है, वे अच्छी भली परिस्थितियों में भी दुर्गति और अवगति का कठोर दुख सहते हैं। वैभव अर्जित करने के अनेक तरीके सीखे और सिखाए जाते हैं। शरीर को निरोग रखने के लिए भी व्यायामशालाओं, स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पतालों तक की अनेक व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, शासकीय प्रबंध भी अनेक हैं, पर ऐसी व्यवस्थाएं कम ही कहीं दिख पड़ती है जिनसे चेतना को परिष्कृत एवं विकसित करने के लिए सार्थक, समर्थ एवं बुद्धि संगत सर्वोपयोगी आधार बन पड़ा हो। प्रज्ञायोग एक ऐसी ही विधा है। इसे बोलचाल की भाषा में जीवन साधना भी कहा जा सकता है। इसमें जप, ध्यान, प्राणायाम, संयम जैसे विधानों की व्यवस्था है, पर सब कुछ उतने तक ही सीमित नहीं है। उपासना में ध्यान धारणा स्तर के सभी कर्मकांड आ जाते हैं। इसके साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में मानवीय गरिमा को उभारने और रुकावटें हटाने जैसे सभी पक्षों को जोड़कर रखा गया है। शरीर संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम इस धारा के अलग न हो सकने वाले अंग हैं। दुर्गुणों के, कुसंस्कारों के निराकरण पर जहां जोर दिया गया है, वहां यह भी अनिवार्य माना गया है कि अब की अपेक्षा अगले दिनों अधिक विवेकवान, चरित्रवान और पुरुषार्थ परायण बनने के लिए चिंतन तथा अभ्यास जारी रखा जाए। वास्तव में यह समग्रता ही जीवन साधना की विशेषता है। साधक को कर्तव्य क्षेत्र में धार्मिकता, मान्यता क्षेत्र में आत्मप्रायणता और अध्यात्म क्षेत्र में दूरदर्शी विवेकशीलता उत्कृष्ट आदर्शवाद को अपनाने के लिए कहा जाता है। इन सर्वतोमुखी दिशाधाराओं में समुचित जागरूकता बरतने पर ही वह लाभ मिलता है जिसे आत्म परिष्कार के नाम से जाना जाता है। यह हर किसी के लिए सरल, संभव और स्वाभाविक भी है। आत्म परिष्कार के अन्य उपाय भी हो सकते हैं, पर जहां तक प्रज्ञा परिवार के प्रयोगों का संबंध है, वहां यह कहा जा सकता है कि वह अपेक्षाकृत अधिक सरल, तर्कसंगत और व्यवस्थित हैं। इस संदर्भ में अनेक अभ्यासरत अनुभवियों की साक्षी भी सम्मिलित है। आत्मिक प्रगति का महत्व समझा जाना चाहिए। व्यक्ति या राष्ट्र की उन्नति उसकी संपदा, शिक्षा, कुशलता आदि तक ही सीमित नहीं होती। शालीनता संपन्न व्यक्तित्व ही वह उद्गम है जिसके आधार पर अन्यान्य प्रकार की प्रगतियां तथा व्यवस्थाएं अग्रणी बनती हैं। समर्थता का केंद्र बिंदु यही है। इस एकाकी विभूति के बल पर किसी भी उपयोगी दिशा में अग्रसर हुआ जा सकता है, किंतु यदि आत्मबल का अभाव रहा तो संकीर्ण स्वार्थपरता ही छाई रहेगी और उसके रहते कोई ऐसा प्रयोजन सद न सकेगा जिसे आदर्शवादी एवं लोकोपयोगी भी कहा जा सके। यहाँ वह उक्ति पूरी तरह फिट बैठती है जिसमें कहा गया है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अनेक प्रकार की समृद्धियों और विशेषताओं से लदा हुआ व्यक्ति अपने कौशल के बलबूते संपदा बटोर सकता है, सस्ती वाहवाही भी लूट सकता है, पर जब कभी मानवीय गरिमा की कसौटी पर कसा जाएगा तो वह खोटा ही सिद्ध होगा। खोटा सिक्का अपने अस्तित्व से किसी को भ्रम में डाले रह सकता है, पर उस सुनिश्चित प्रगति का अधिकारी नहीं बन सकता जिसे महामानव के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभ्य, सुसंस्कृत, सज्जन, समुन्नत जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। संत परंपरा के अनेकानेक महान ऋषियों, लोकसेवियों एवं युग निर्माताओं से जो प्रबल पुरुषार्थ बन पड़े, उनमें आंतरिक उत्कृष्टता ही प्रमुख कारण रही। उसी के आधार पर वे निजी जीवन में आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवीय अनुग्रह की निरंतर वर्षा होती अनुभव करते हैं। अपने व्यक्तित्व, कर्तृत्व के रूप में ऐसा अनुकरणीय उदाहरण पीछे वालों के लिए छोड़ जाते हैं जिनका अनुकरण करते हुए गिरों को उठाने और उठों को उछालने जैसे अवसर हस्तगत होते रहें। यही है जीवन की लक्ष्य पूर्ति एवं एकमात्र सार्थकता। प्रज्ञायोग की जीवन साधना इसी महती प्रयोजन की पूर्ति करती है। व्यवहारिक साधना के चार पक्ष, ज्ञान और कर्म के संयोग से ही प्रगतिपथ पर चल सकना, सफलता वरण करने की स्थिति तक पहुंचना संभव होता है। अध्यात्म विज्ञान में भी तत्व दर्शन का सही स्वरूप समझने के उपरांत दूसरा चरण यही रहता है कि उसे क्रियान्वित करने की पूजा अर्चना की विधि व्यवस्था ठीक बने। अध्यात्म का तत्व दर्शन, आत्म परिष्कार और आत्मविकास को दो शब्दों में सन्निहित समझा जा सकता है। उपासना पक्ष की प्रतीक पूजा का तात्पर्य है क्रिया एवं साधनों के सहारे आत्मशिक्षण की आवश्यकता पूरी करना। कोई भी कर्मकांड उसकी भावनाओं को हृदयंगम किए बिना पूर्ण नहीं हो सकता। मात्र कर्मकांड को जादू का खेल समझते हुए बड़ी सफलता की आशा नहीं की जा सकती। क्रियाएं जब जिसको जिस मात्रा में प्रभावित करेगी, वह उसी मात्रा में सत्परिणाम प्राप्त कर सकने में सफल होगा। सर्वजनीन सुलभ साधना का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए इन पृष्ठों पर प्रज्ञायोग नाम से वह विधान प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके सहारे अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में अन्यान्य उपाय उपचारों की अपेक्षा अधिक सरलतापूर्वक कम समय में अधिक सफलता मिल सकती है। प्रज्ञायोग की दो संध्याएं अत्यधिक सरल और अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। एक सवेरे आंख खुलते ही बिस्तर पर पड़े पड़े 15 मिनट हर दिन नया जन्म की भावना करने का उपक्रम है। दूसरा रात्रि को सोते समय यह अनुभव करना कि शयन एक प्रकार का दैनिक मरण है। जन्म और मरण यही दो जीवन सत्ता के ओर छोर हैं। इन्हें सही रखा जाए तो मध्यवर्ती भाग सरलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। बीजारोपण और फसल काटना, यही दो कृषि कार्य के प्रमुख अंग हैं। शेष तो लंबे समय तक चलने वाली किसान की सामान्य क्रिया प्रक्रिया है। उसे तो सामान्य बुद्धि और सामान्य अभ्यास से भी चलाया जा सकता है। जागृति को प्रातः काल की संध्या और शयन को रात्रि की संध्या कहा जा सकता है। दो बार संध्याएं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वाली मानी जाती हैं। पर उसके साथ जुड़ी आध्यात्मिक साधना प्रातः काल आंख खुलते समय और रात्रि को सोने आंख बंद होने के समय की जा सकती है। प्रज्ञायोग की प्रथम साधना को आत्मबोध कहते हैं। आंख खुलते ही यह भावना करनी चाहिए कि आज अपना नया जन्म हुआ, एक दिन ही जीना है, रात्रि को मरण की गोद में चले जाना है। इस अवधि का सर्वोत्तम उपयोग करना ही जीवन साधना का महान लक्ष्य है। यही अपना परीक्षा क्रम है और उसी में भविष्य की सारी संभावना सन्निहित है। मनुष्य जन्म जीवधारी के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसका सदुपयोग बन पड़ना ही किसी की उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता का प्रमाण परिचय है। उठते ही यह विचार करना चाहिए कि आज के एक दिन को संपूर्ण जीवन माना जाए जिनके लिए इसे दिया गया है। इस आधार पर दिन भर की दिनचर्या इसी समय निर्धारित की जाए। चिंतन, चरित्र और व्यवहार की वह रूपरेखा विनिर्मित की जाए जिसे सतर्कता पूर्वक पूरी करने पर यह माना जा सके कि आज का दिन एक बहुमूल्य जन्म पूरी तरह सार्थक हुआ। इस चिंतन के सभी पक्षों पर विचार करने में जितना अधिक समय लगे उतना कम है, पर इसे नित्य प्रति नियमित रूप से करते रहने पर 15 मिनट भी पर्याप्त हो सकते हैं। एक दिन की छूटी बात को अगले दिन पूरा किया जा सकता है। दूसरी संध्या रात को सोते समय पूरी की जाती है, उसमें यह माना जाना चाहिए कि अब मृत्यु की गोद में जाया जा रहा है। भगवान के दरबार में जवाब देना होगा कि आज के समय का, एक दिन के जीवन का किस प्रकार सदुपयोग बन पड़ा। इसके लिए दिनभर के समयापन परक क्रियाकलापों और विचारों के उतार चढ़ावों की समीक्षा की जानी चाहिए। उसके उद्देश्य और स्तर को निष्पक्ष होकर परखना चाहिए तथा देखना चाहिए कि कितना उचित बन पड़ा और कितना उसमें भूल या विकृति होती रही। जो सही हुआ उसके लिए अपनी प्रशंसा की जाए और जहां जो भूल हुई हो उसकी भरपाई अगले दिन करने की बात सोची जाए। पाप का प्रायश्चित शास्त्रकारों ने यही माना है कि उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। आज का दिन जो गुजर गया उसे लौटाया तो नहीं जा सकता, पर यह हो सकता है कि उसका प्रायश्चित अगले दिन किया जाए। अगले दिन के क्रियाकलाप में आज की कमी को पूरा करने की बात भी जोड़ ली जाए। इस प्रकार कुछ भार तो अवश्य बढ़ेगा, पर उसके परिमार्जन का और कोई उपाय भी तो नहीं है। मृत्यु अवश्यंभावी है, लोग उसे भूल जाते हैं और बाल क्रीड़ा की तरह महत्वहीन कार्यों में जीवन बिता देते हैं। यदि यह ध्यान रखा जाए कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत जो अलभ्य हस्तगत हुआ है उसे इस प्रकार व्यतीत किया जाए जिससे भविष्य उज्ज्वल बने, देवमानव स्तर तक पहुंचाने की आशा बंधे, दूसरों को अनुकरण की प्रेरणा मिले, सृष्टा को दायित्व निर्वाह की प्रामाणिकता का परिचय पाकर प्रसन्नता हो, पदोन्नति का सुयोग इस आधार पर उपलब्ध हो, रात्रि को जिस प्रकार निश्चिंतता पूर्वक सोया जाता है उसी प्रकार मरणोत्तर काल से लेकर पुनर्जन्म की मध्यावधि में भी ऐसी ही शांति रह सकती है। इसकी तैयारी इन्हीं दिनों करनी चाहिए। हंसी खुशी से दिन बीतता हो तो रात्रि को गहरी नींद आती है। दिन यदि शांतिपूर्वक गुजारा जाए, श्रेष्ठता के साथ जुड़ा रहे तो मरणोत्तर विश्राम काल में नरक नहीं भुगतान पड़ेगा, स्वर्ग जैसी शांति का रसास्वादन मिलता रहेगा। इस प्रक्रिया को तत्व बोध कहा गया है। प्रज्ञायोग के दो और चरण हैं जिनको दिन में पूरा किया जाता है। इनमें एक है भजन, दूसरा मनन। भजन के लिए नित्य कर्म से निवृत्त होकर नियत पूजा स्थान पर पालथी मारकर बैठा जाता है। शरीर, मन और वाणी की शुद्धि के लिए जल द्वारा पवित्रीकरण, सिंचन, आचमन किया जाता है। देव प्रतिमा के रूप में गायत्री की छवि अथवा धूप, दीप में से कोई प्रतीक स्थापित करके इसे इष्ट आराध्य माना जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य, जल, अक्षत, पुष्प में से जो उपलब्ध हो उससे उसका पूजन किया जाता है। पूजन में प्रयुक्त वस्तुओं की तरह अपने जीवन में उन विशेषताओं को उत्पन्न करने की भावना की जाती है जो इन उपचार साधनों में पाई जाती है। चंदन समीपवर्तियों में सुगंध भरता है। दीपक अपने प्रभाव क्षेत्र में ज्ञानरूपी प्रकाश फैलाता है। पुष्प हंसता है और खिलता रहता है। जल शीतलता का प्रतीक बनकर रहता है। अक्षत, नैवेद्य के पीछे समयदान, अंशदान, परमार्थ प्रयोजन के लिए निकाले जाने की भावना है। इष्टदेव को सत्प्रवृत्ति का समुच्चय माना जाए। इन मान्यताओं के आधार पर देव पूजन समग्र बन पड़ता है। अब जप और ध्यान की बारी आती है। दोनों एक साथ चल सकते हैं। गायत्री जप मानसिक हो तो भी ठीक है। जितनी देर करने का निश्चय हो उसका हिसाब माला या घड़ी के सहारे किया जाता है। जिन्हें गायत्री की अपेक्षा कोई अन्य मंत्र रुचिकर होवे उसे अपना सकते हैं। ओमकार भी सार्वभौम स्तर की जप मान्यता बन सकता है। जप के साथ प्रातःकाल के उदीयमान स्वर्णिम सूर्य का ध्यान किया जाए। भावना करनी चाहिए कि अपना खुला शरीर सूर्य के सम्मुख बैठा है। इष्ट की सूक्ष्म किरणें अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में प्रवेश कर रही हैं। किरणें ऊर्जा और आभा की प्रतीक हैं। ऊर्जा अर्थात शक्ति, आभा अर्थात प्रकाश प्रज्ञा, दोनों का समन्वय तीनों शरीरों में प्रवेश करके उन्हें प्रभावित करता है, ऐसी भावना की जानी चाहिए। प्रत्यक्ष शरीर में स्वास्थ्य और संयम, सूक्ष्म शरीर मस्तिष्क में विवेक और साहस, कारण शरीर अर्थात अंत करण में श्रद्धा सद्भावना सूर्य किरणों के रूप में प्रवेश करके अस्तित्व की समग्र सत्ता को अनुप्राणित कर रही है। यह ध्यान धारणा और मंत्र जप साथ साथ नियत निर्धारित समय तक चालू रखे जाएं और अंत में पूर्णाहुति में सूर्य के सम्मुख जलरूपी अर्घ्य दिया जाए। इसका तात्पर्य है परम सत्ता के सम्मुख जलरूपी आत्मसत्ता का समर्पण। भजन भावना इतनी ही है। यदि नियत स्थान पर बैठ सकना संभव नहीं, सफर में चलने जैसी स्थिति हो तो वह सारे कृत्य मानसिक रूप से बिना किसी वस्तु की सहायता के भी किए जा सकते हैं। प्रज्ञायोग साधना का चौथा चरण है मनन। यह मध्यानोत्तर कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। समय 15 मिनट हो तो भी काम चल जाएगा। इसमें अपनी वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाती है और आदर्शों के मापदंड से जांच पड़ताल करने पर जो कमी प्रतीत हो उसे पूरा करने की योजना बनानी पड़ती है। यही मनन है। इसके लिए एकांत स्थान ढूंढना चाहिए। आंखें बंद करके अंतर्मुखी होना और आत्मसत्ता के संबंध में परिमार्जन परिष्कार की उभयपक्षीय योजना बनानी चाहिए। इसमें आज के दिन को प्रधान माना जाए। प्रातः से मध्यान्ह तक जो सोचा और किया गया हो उसे आदर्शों के मापदंड से जांचना चाहिए और उस समय से लेकर सोते समय तक जो कुछ करना हो उसकी भावनात्मक योजना बनानी चाहिए ताकि दिन के पूर्वार्ध की तुलना में उत्तरार्ध और भी अच्छा बन पड़े। आत्मसमीक्षा के चार मापदंड हैं 1 इंद्रिय संयम, 2 समय संयम, 3 अर्थ संयम, 4 विचार संयम। देखना चाहिए कि इन चारों में कहीं कोई व्यतिक्रम तो नहीं हो रहा है। जीव स्वाद के नाम पर अभक्ष्य भक्षण तो नहीं करने लगी। वाणी से असंस्कृत वार्तालाप तो नहीं होता। कामुकता की प्रवृत्ति कहीं कुदृष्टि से तो नहीं उभर रही। असंयम से शरीर और मस्तिष्क खोखला तो नहीं हो रहा। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनाए रखने के लिए इंद्रिय निग्रह अमोघ उपाय है। समय संयम का अर्थ है एक एक क्षण का सदुपयोग। आलस्य प्रमाद में, दुर्व्यसनों में, दुर्गुणों के कुचक्र में फंसकर समय का एक अंश भी बर्बाद न होने पाए, इसकी सुरक्षा और सदुपयोग पर पूरी पूरी जागरूकता बरती जानी चाहिए। समय ही जीवन है। जिसने समय का सदुपयोग किया समझो कि उसने जीवन का परिपूर्ण लाभ उठा लिया। तीसरा संयम है अर्थ संयम। पैसा ईमानदारी और परिश्रम पूर्वक कमाया जाए। मुफ्तखोरी और बेईमानी का आश्रय न लिया जाए। औसत भारतीय स्तर का जीवन जिया जाए। सादा जीवन उच्च विचार की नीति अपनाई जाए। विलास प्रदर्शन की मूर्खता में कुछ भी खर्च न होने दिया जाए। कुरीतियों के नाम पर भी बर्बादी न चले। बचत का एक बड़ा अंश परमार्थ प्रयोजन में लगा सकने और पुण्य की पूंजी जमा करने का श्रेय उन्हीं को मिलता है जो विवेकपूर्वक औचित्य का ध्यान रखते हुए खर्च करते हैं। चौथा संयम है विचार संयम। मस्तिष्क में हर घड़ी विचार उठते रहते हैं, कल्पनाएं चलती रहती हैं। ये अनर्गल, अस्त व्यस्त एवं अनैतिक स्तर के न हो इसके लिए विवेक को एक चौकीदार की तरह नियुक्त कर देना चाहिए। उसका काम हो कुविचारों को सद्विचारों की टक्कर मारकर परास्त करना। अंगड़ विचारों के स्थान पर रचनात्मक चिंतन का सिलसिला चलाना। विचार मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। वही कर्म के रूप में परिणत होती और परिस्थिति बनकर सामने आती है। जीवन को कल्पवृक्ष बनाने का श्रेय रचनात्मक विचारों का ही होता है। इस तथ्य को भली प्रकार समझते हुए चिंतन को मात्र रचनात्मक एवं उच्च स्तरीय विचारों में ही संलग्न रखना चाहिए। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के चार पुरुषार्थों में जीवन की प्रगति एवं सफलता बन पड़ती है। इसलिए दिनचर्या में उन चारों के लिए समुचित स्थान रहे, उसकी जांच पड़ताल आत्मसमीक्षा के समय में निरंतर करनी चाहिए। आत्मसमीक्षा, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास की चतुर्दिक प्रक्रिया को अग्रगामी बनाने के लिए मध्यांतर काल की मनन साधना करनी चाहिए। इसे आत्मदर्शन समझा जाना चाहिए, जो थोड़ी विकसित अवस्था में ईश्वर दर्शन के रूप में फलित होता है। जीवन साधना के सुनिश्चित सूत्र। उपासना पक्ष के चार चरण पिछले पृष्ठों पर बताए जा चुके हैं। 1. प्रातः काल आंख खुलते ही नया जन्म। 2. रात्रि को सोते समय नित्य मरण। 3. नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद जप ध्यान वाला भजन। 4. मध्याह के बाद मनन के क्रम में अपनी स्थिति का विवेचन और उदात्तीकरण। कुछ दिन के अभ्यास से इन चारों को दिनचर्या का अविच्छिन्न अंग बना लेना सरल संभव हो जाता है। इष्टदेव के साथ अनन्य आत्मीयता स्थापित कर लेना, उसके ढांचे में ढलने का प्रयत्न करना, यही सच्ची भगवत भक्ति है। द्वैत को अद्वैत में बदलना इसी आधार पर बन पड़ता है। सत्प्रवृत्तियों के समुच्चय परमात्मा के साथ लिपटने की वास्तविकता को इसी आधार पर परखा जा सकता है। जीवन क्रम में शालीनता, सद्भाव, उदारता, सेवा संवेदना जैसी उमंगें अंतराल में उठती हैं या नहीं, आग के संपर्क में आकर ईंधन भी अग्नि बन जाता है। ईश्वर भक्त में अपने इष्टदेव की अनुरूपता उभरनी चाहिए। इस कसौटी पर हर किसी की भक्ति भावना कितनी यथार्थता है, इसकी जांच परख की जा सकती है। भगवान का अनुग्रह भी इसी आधार पर जांचा जाता है। जहां सूर्य की किरणें पड़ेंगी, वहां गर्मी और रोशनी अवश्य दृष्टिगोचर होगी। ईश्वर का सान्निध्य निश्चित रूप से भक्तजनों में प्रामाणिकता और प्रखरता की विभूतियां अवतरित करता है। इस आधार पर उसका चिंतन, चरित्र और व्यवहार उत्कृष्ट आदर्शवादिता की हर कसौटी पर खरा उतरता चला जाता है। सच्ची और झूठी भक्ति की परीक्षा हाथों हाथ प्राप्त होती चलती है। यह प्रतीत होता रहता है कि समर्थ सत्ता का अनुग्रह हाथों हाथ प्राप्त होने की मान्यता पर उपासना खरी उतरी या नहीं। आत्मोत्कर्ष की दूसरा अवलंबन है साधना। साधना अर्थात जीवन साधना। साधना अर्थात अस्तव्यस्तता को सुव्यवस्था में बदलना। इसके लिए दो प्रयास निरंतर जारी रखने पड़ते हैं। एक, अभ्यस्त दुष्प्रवृत्तियों को बारीकी से देखना, समझना और उन्हें उखाड़ने के लिए अनवरत प्रयत्नशील संघर्षशील रहना। दूसरा कार्य है मानवीय गरिमा के अनुरूप जिन सत्प्रवृत्तियों की अभी कमी मालूम पड़ती है, उनकी आवश्यकता उपयोगिता को समझते हुए उसके लिए अनुकूलता स्तर का मानस बनाना। यह उभयपक्षीय क्रम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहृत होते चले तो समझना चाहिए कि जीवन साधना साधने का सरंजाम जुटा। माना कि कार्य समय साध्य और श्रम साध्य है, फिर भी वह असंभव नहीं है। कछुआ धीमी गति से चलकर भी बाजी जीत गया था। असफल तो वे खरगोश होते हैं जो क्षणिक उत्साह दिखाने के उपरांत मन बदल लेते और इधर उधर भटकते हैं। स्थिरता, तत्परता और तन्मयता हर प्रसंग में सफलता का श्रेष्ठ माध्यम बनती हैं। जीवन साधना के लिए भी किया गया प्रयत्न सफल होकर ही रहता है। किसान अपने खेत में खरपतवार उखाड़ता रहता है, कंकड़ पत्थर बीनता रहता है, इसे परिशोधन कहा जा सकता है। जानवरों, पक्षियों से खेत की रखवाली करना भी इसी स्तर का कार्य है। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। खेत में खाद पानी लगाना पड़ता है, यह परिपोषण पक्ष है। निराई गुड़ाई का एक उद्देश्य यह भी है कि जमीन पोली बनी रहे, जड़ों में धूप हवा की पहुंच बनी रहे। फसल को उगाने का यही तरीका है। जीवन को सुविकसित करना भी एक प्रकार का कृषि का कार्य है। इसके लिए भी इसी नीति को अपनाना होता है। शरीर में मल, मूत्र, पसीना, कफ आदि के द्वारा सफाई होती है। स्नान का उद्देश्य भी यही है। सफाई से संबंधित अनेक उपक्रम भी इसीलिए चलते हैं कि विषाणुओं का आक्रमण न होने पाए। सर्दी गर्मी से बचने के लिए अनेक प्रयत्न भी इसी उद्देश्य से किए जाते हैं कि हानि पहुंचाने वाले तत्वों से निपटा जाता रहे। जीवन भी एक शरीर है, उसे गिराने के लिए पग पग पर अनेकानेक संकट, प्रलोभन, दबाव उपस्थित होते रहते हैं। उनसे निपटने के लिए सतर्कता न बरती जाए तो बात कैसे बने। चोर उचकों, ठगों, उद्दंडों की उपेक्षा न होती रहे तो वे असाधारण क्षति पहुंचाए बिना न रहेंगे। दुष्प्रवृत्तियां जन्म जन्मांतरों से संचित पशु प्रवृत्तियों के रूप में स्वभाव के साथ गुंथी रहती है। फिर निकटवर्ती लोग जिस राह पर चलते और जिस स्तर की गतिविधियां अपनाते हैं, वे भी प्रभावित करती हैं और अपने साथ चलने के लिए ललचाती हैं। जो कुछ बहुत जनों द्वारा किया जाता दिखता है, अनुकरणप्रिय स्वभाव भी उसकी नकल बनाने लगता है। इतना विवेक तो किन्हीं विरलों में ही पाया जाता है कि वे उचित अनुचित का विचार करें, दूरवर्ती परिणामों का अनुमान लगाएं और सन्मार्ग पर चलने के लिए बिना साथियों की प्रतीक्षा किए एकाकी चल पड़ने का साहस जुटाएं। आमतौर से लोग प्रचलित धर्रे पर चलते देख गए हैं। पत्ते और धूलिकण हवा के रुख के साथ उड़ने लगते हैं। दिशाबोध उन्हें कहाँ होता है? यही स्थिति लोकमानस के संबंध में भी कही जा सकती है। नीर क्षीर की विवेक बुद्धि तो कम दीख पड़ने वाले राजहंसों में ही होती है। अन्य पक्षी तो ऐसे ही कूड़ा कचरा और कीड़े मकोड़े खाते देखे गए हैं। किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना एक बात है और उसका सदुपयोग बन पड़ना सर्वथा दूसरी। स्वास्थ्य सभी को मिला है, पर उसे बनाए रखने में समर्थ विरले ही होते हैं। अधिकांश तो असंयम अपनाते और उसे बर्बाद ही करते हैं। बुद्धि का सदुपयोग कठिन है, चतुर कहे जाने वाले लोग भी उसे कहाँ कर पाते हैं। धन कमाते तो सभी हैं, पर उसका आधा चौथाई भाग भी सदुपयोग में नहीं लगता। उसे जिन कामों में जिस तरह खर्चा जाता है, उससे खर्चने वालों की, उनके संपर्क में आने वालों की तथा सर्वसाधारण की बर्बादी ही होती है। प्रभाव का उपयोग प्रायः गिराने, दबाने, भटकाने में ही होता रहता है। इसे समझदार कहे जाने वाले मनुष्य की नासमझी ही कहा जाएगा। यह व्याधि सर्वसाधारण को बुरी तरह ग्रसित किए हुए है। इसी को कहते हैं राजमार्ग छोड़कर मृत तृष्णा में, भूल भुलैयों में भटकना। जीवन संपदा के संबंध में भी यही बात है। जन्म से मरण पर्यंत पेट प्रजनन जैसी सामयिक बातों में ही आयुष्य बीत जाता है। आवारागर्दी में दिन कट जाता है। हर व्यक्ति की मन स्थिति परिस्थिति अलग होती है। यही बात दुर्गुणों और सद्गुणों की न्यूनाधिकता के संबंध में भी है। किसे अपने में क्या सुधार करना चाहिए और किन नई सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन गुण कर्म स्वभाव के क्षेत्र में करना है, यह आत्म समीक्षा के आधार पर सही विश्लेषण होने के उपरांत ही संभव है। इसके लिए कोई एक निर्धारण नहीं हो सकता है। यह कार्य हर किसी को स्वयं करना होता है। दूसरों को तो थोड़ा बहुत परामर्श ही काम दे सकता है। नित्य निरंतर हर कोई किसी के साथ रहता नहीं। फिर रोग का कारण और निदान जानते हुए उपचार का निर्धारण कोई अन्य किस प्रकार कर सके? थोड़े समय तक संपर्क में आने वाला केवल उतनी ही बात जान सकता है जितनी की मिलन काल में उभर कर सामने आती है। यह सर्वथा अधूरी रहती है। इसलिए अन्यान्यों के परामर्श पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। यह कार्य स्वयं अपने को ही करना पड़ता है। इसमें भी एक कठिनाई यह है कि मानसिक संरचना के अनुसार हर व्यक्ति अपने को निर्दोष मानता है, साथ ही सर्वगुण संपन्न भी समझता रहता है। यह स्थिति सुधार और विकास दोनों में बाधक है। जब तक कमी का आभास न हो तब तक उसकी पूर्ति का तारतम्य कैसे बने? अस्तु, आत्मविकास के मार्ग पर चलने वाले, जीवन साधना के मार्ग पर अग्रसर होने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि निष्पक्षता की मनोभूमि विकसित की जाए। खासतौर से अपने संबंध में उतना ही तीखापन होना चाहिए जितना कि आमतौर से दूसरों के दोष दुर्गुण ढूंढने में हर किसी का रहता है। आरोप लगाने और लांछित करने में हर किसी को प्रवीण पाया जाता है। इस सहज वृत्ति को ठीक उल्टा करने से आत्मसमीक्षा की वह प्राथमिक आवश्यकता पूरी होती है जिसके बिना व्यक्तित्व का निखार प्रायः असंभव ही बना रहता है। वह न बन पड़े तो किसी को भी महानता अपनाने और प्रगति के उच्च शिखर तक पहुंच सकने का अवसर मिल ही नहीं सकता। क्या करें? प्रश्न के उत्तर में एक पूरक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या नहीं हो रहा है और ऐसे क्या अनुपयुक्त हो रहा है जिसे नहीं सोचा या नहीं किया जाना चाहिए था। किन्हीं सुविकसित और सुसंस्कृत बनने वालों के निजी दृष्टिकोण स्वभाव और दिशा निर्धारण को समझते हुए यह देखा जाना चाहिए कि वैसा कुछ अपने से बन पड़ रहा है या नहीं। यदि नहीं बन पड़ रहा है तो उनका कारण और निवारण क्या हो सकता है। इस प्रकार के निर्धारण जीवन साधना के साधकों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। जो अपनी त्रुटियों की उपेक्षा करता रहता है, जो अगले दिनों अधिक प्रखर और अधिक प्रामाणिक बनने की बात नहीं सोच सकता, उस प्रकार की योजना बनाकर उनके लिए कटिबद्ध होने की तत्परता नहीं दिखा सकता, उसके संबंध में यह आशा नहीं की जा सकती कि वह किसी ऐसी स्थिति में पहुंच सकेगा जिसमें अपने गर्व गौरव अनुभव करने का अवसर मिल सके, साथ ही दूसरों का सहयोग सम्मान पाकर अधिक ऊंची स्थिति तक पहुंच सकना संभव हो सके। साधक के लिए आलस्य, प्रमाद, असंयम, अपव्यय एवं उन्मत्त और अस्त व्यस्त रहना प्रमुख दोष है। अचिंत्य चिंतन और अकर्मों को अपनाना पतन पराभव के यही दो कारण हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता में अपने को जकड़े रहने वाले अपनी और दूसरों की दृष्टि में गिर जाते हैं। उत्कृष्टता और आदर्शवादिता से रिश्ता तोड़ लेने पर लोग समझते हैं कि इस आधार पर नफे में रहा जा सकेगा, पर बात यह है कि ऐसों को सर्वसाधारण की उपेक्षा सहनी पड़ती है और असहयोग की शिकायत बनी रहती है। अपना चिंतन, चरित्र, स्वभाव और व्यवहार यदि उच्छिपन से ग्रसित हो तो उसे उसी प्रकार धो डालने का प्रयत्न करना चाहिए जैसे कि कीचड़ से सन जाने पर उस गंदगी को धोने का अविलंब प्रयत्न किया जाता है। गंदगी से सने फिरना किसी के लिए भी अपमान की बात है। इसी प्रकार मानवीय गरिमा से अलंकृत होने पर भी क्षुद्रताओं और निकृष्टताओं का परिचय देना न केवल दुर्भाग्य सूचक है वरन साथ में यह अभिशाप भी जुड़ता है कि कोई महत्वपूर्ण, उत्साहवर्धक और अभिनंदनीय प्रगति कर सकने का आधार कभी हाथ ही नहीं आता। पेट भरने और परिवार के लिए मरते खपते रहना किसी भी गरिमाशील के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। इस नीति को तो पशु पक्षी और कीट पतंग ही अपनाते रहते हैं और मौत के दिन किसी प्रकार पूरे कर लेते हैं। यदि मनुष्य भी इसी कुचक्र में पिसता और दूसरों को पीसता रहे तो समझना चाहिए कि उसने मनुष्य जन्म जैसी देव दुर्लभ संपदा को कौड़ी मोल गंवा दिया। नित्य आत्मविश्लेषण, सुधार, सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन